एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे।
हाँ,
ये इस बात की पड़ताल करती है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में क्या सोचते हैं, और ये सोच हमारी सफलता, हमारे रिश्तों, मतलब हमारी खुशी को कैसे तय करती है।
हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली किताब है। हम बात कर रहे हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरल एस ड्वेक की।
हाँ,
उनकी वो विश्व प्रसिद्ध किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, ये उन किताबों में से है जिन्हें पढ़ने के बाद लगता है, अरे ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, है ना?
बिल्कुल।
और आज के समय में तो ये और भी जरूरी हो गई है, मुझे लगता है।
दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है।
हर रोज नई चुनौतियां आ रही हैं, तो ऐसे में ये समझना कि कुछ लोग मुश्किलों में भी आगे क्यों बढ़ जाते हैं,
जबकि कुछ थम जाते हैं।
हाँ, जबकि कुछ थम जाते हैं, ये जानना बहुत अहम है।
और ये किताब इसी पहेली को सुलझाने में मदद करती है। ये बताती है कि सफलता सिर्फ किस्मत या पैदाइशी हुनर का खेल नहीं है।
नहीं,
अच्छा।
असल चीज है हमारी मानसिकता या माइंडसेट।
हाँ।
हम चुनौतियों को, नाकामयाबी को, मेहनत को
हाँ।
किस नजरिए से देखते हैं, यही सब कुछ तय करता है। तो चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा डॉक्टर ड्वेक के बारे में जानना भी जरूरी है, क्यों?
हाँ।
वो सिर्फ एक लेखिका नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि दुनिया की जानी मानी मनोवैज्ञानिक हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। उनका काम पर्सनालिटी, सोशल साइकोलॉजी, इन सब में बहुत प्रभावशाली रहा है।
सही बात है।
और इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ उनकी राय या विचारों पर आधारित नहीं है,
नहीं,
ये उनके लगभग 30 सालों के गहरे वैज्ञानिक शोध का निचोड़ है।
30 साल। हाँ, उन्होंने हजारों लोगों, खासकर बच्चों पर रिसर्च की है।
हाँ, उनके वो प्रयोग तो बहुत मशहूर हैं, वो पहली वाला प्रयोग
हाँ,
जहां उन्होंने देखा कि जिन बच्चों की तारीफ उनकी स्मार्टनेस के लिए की गई, मतलब वाओ तुम तो बहुत स्मार्ट हो,
हाँ,
वो आगे चलकर मुश्किल सवालों से कतराने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाएं और उनकी स्मार्ट वाली इमेज वो टूट ना जाए।
बिल्कुल। जबकि जिन बच्चों की तारीफ उनकी कोशिश के लिए हुई, वाह तुमने तो बहुत मेहनत की, वो मुश्किल चुनौतियों को भी आजमाने के लिए तैयार थे, उन्हें सीखने में मजा आ रहा था।
अच्छा,
इसी रिसर्च से ये फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का क्रांतिकारी आइडिया निकला। तो ये किताब किसी के निजी अनुभव पर नहीं, बल्कि ठोस रिसर्च पर आधारित है।
चलिए तो अब किताब के दिल में उतरते हैं। माइंडसेट, दरअसल ये हमारी उन गहरी मान्यताओं के बारे में है जो हमें शायद पता भी नहीं होती।
छिपी हुई।
हाँ, छिपी हुई, लेकिन वो हमारे हर फैसले और हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देती हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि मोटे तौर पर दो तरह की मानसिकताएं होती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट
और ग्रोथ माइंडसेट।
हाँ,
फिक्स्ड माइंडसेट, जैसा कि नाम से ही लगता है, ये सोच है कि हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, हमारे गुण, ये सब तय है, फिक्स्ड है।
पत्थर की लकीर जैसे।
हाँ बिल्कुल, पत्थर की लकीर जैसे, इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ये साबित करने में लगा देते हैं कि वो कितने काबिल हैं। उनका मेन फोकस होता है स्मार्ट दिखना और स्मार्ट महसूस करना।
और इसी वजह से, जैसा आपने उस प्रयोग में भी जिक्र किया, वो चुनौतियों से बचते हैं।
हाँ,
क्योंकि चुनौती में फेल होने का डर होता है, और फेलियर उनके लिए अपनी पहचान पर एक सवालिया निशान जैसा होता है।
बिल्कुल। और मेहनत करना भी उन्हें कमजोरी लगती है। अगर आप सच में टैलेंटेड हैं तो मेहनत क्यों करनी पड़े, ये सोच होती है।
हाँ, ये बात भी है।
बिल्कुल इसके उलट है ग्रोथ माइंडसेट। ये इस विश्वास पर टिका है कि हमारी बुनियादी काबिलियतें, हमारी समझ, हमारी प्रतिभा, इन्हें मेहनत, लगन, सीखने की चाह और सही तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, उनका लक्ष्य स्मार्ट दिखना नहीं होता,
तो क्या होता है?
सीखते रहना और बेहतर बनना।
बस।
अच्छा।
तो ऐसे लोग चुनौतियों को डर की नजर से नहीं देखते?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका मानते हैं। उनके लिए असफलता दुनिया का अंत नहीं है,
तो क्या है?
वो बस एक जरूरी फीडबैक है कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा, कुछ और आजमाना पड़ेगा। और मेहनत, वो तो कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता है, शर्मिंदगी की बात नहीं।
क्या बात है।
और किताब सिर्फ इन दो माइंडसेट के बारे में बताकर रुक नहीं जाती। ये हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को कैसे पहचानें।
अच्छा।
और कैसे धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ें। ये सबके लिए है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, मतलब हर कोई जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है।
तो आइए इन विचारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किताब के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि ये माइंडसेट असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये दोनों माइंडसेट अंदर से कैसे चलते हैं,
है ना?
हाँ।
फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति हर स्थिति को एक तरह के इम्तिहान की तरह देखता है। क्या मैं कामयाब हूंगा या नाकाम, क्या मैं स्मार्ट लगूंगा या बेवकूफ। उनका सारा ध्यान नतीजे पर और अपनी इमेज बचाने पर होता है। इसीलिए जब मुश्किल आती है तो वो जल्दी घबरा जाते हैं या हार मान लेते हैं।
और आलोचना?
आलोचना उन्हें पर्सनल अटैक लगती है, जैसे कोई उन पर उंगली उठा रहा हो। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति वो उसी स्थिति को सीखने के मौके की तरह देखता है। मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मुझे अपनी कौन सी स्किल बेहतर करनी है।
फोकस प्रक्रिया पर?
हाँ बिल्कुल, उनका फोकस प्रक्रिया पर होता है। इसलिए वो मुश्किलों में डटे रहते हैं, कोशिश को जरूरी मानते हैं और आलोचना को सुधार का जरिया समझते हैं।
दूसरों की कामयाबी से जलते नहीं?
नहीं, बल्कि सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं।
ये फर्क कितना गहरा है, और ये सिर्फ पढ़ाई या काम तक ही सीमित नहीं है जैसा आपने कहा।
नहीं बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ड्वेक खेल और बिजनेस की दुनिया से भी उदाहरण देती हैं, जैसे माइकल जॉर्डन।
हाँ जॉर्डन, उन्हें तो सब नेचुरल टैलेंट मानते थे।
हाँ मानते थे, लेकिन सच यह है कि उन्हें हाई स्कूल टीम से निकाला गया था।
क्या बात कर रही हैं?
हाँ, उन्होंने अपनी कमजोरियों पर जबरदस्त मेहनत की। ये क्लासिक ग्रोथ माइंडसेट है।
अच्छा,
अब वो टेनिस प्लेयर जॉन मैकेनरो।
हाँ जॉन मैकेनरो, उनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा था, पर फिक्स्ड माइंडसेट के कारण वो प्रैक्टिस से बचते थे। अच्छा,
और हार का ठीकरा अंपायर या रैकेट पे फोड़ते थे, कभी खुद पर जिम्मेदारी नहीं लेते थे।
इसी तरह बिजनेस में भी होता होगा।
बिल्कुल, ली आयाकोका जैसे लीडर थे क्राइसलर के, अपनी शुरुआती सफलता के बाद आलोचना सुनने को तैयार नहीं थे। एक तरह से फिक्स्ड माइंडसेट।
और ग्रोथ वाले?
जीई के जैक वेल्च जैसे लीडर थे, वो हमेशा सीखने और टीम को सिखाने पर जोर देते थे।
मतलब लीडर का माइंडसेट पूरी कंपनी का कल्चर बना या बिगाड़ सकता है।
हाँ बिल्कुल, एनरॉन जैसी कंपनियों का उदाहरण भी है जहाँ वो जीनियस कल्चर यानी फिक्स्ड माइंडसेट ही उनके पतन का कारण बना।
और ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है।
हाँ लगता है, पर सोचिए, फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि रिश्ता या तो परफेक्ट होते हैं या खराब। अगर कोई मुश्किल आई
तो मतलब रिश्ता या पार्टनर ही गलत है।
एग्जैक्टली, वो हल ढूंढने के बजाय इल्जाम लगाने लगते हैं, तुम्हारी गलती है, ये रिश्ता चलेगा ही नहीं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले वो मानते हैं कि रिश्ते मेहनत, समझ और संवाद से बेहतर बनते हैं। वो मानते हैं कि दोनों साथी बदल सकते हैं, सीख सकते हैं।
मुश्किलों को वो एक मौका समझते हैं।
हाँ, रिश्ते को गहरा बनाने का एक मौका। वो रिश्ते पर काम करते हैं, उसे परफेक्ट मानकर बैठ नहीं जाते।
यहाँ एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है, आपने कहा था, खासकर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए।
हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ड्वेक जोर देकर कहती हैं कि बच्चों की बुद्धिमानी या टैलेंट की तारीफ करना,
हाँ,
असल में उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
ये सुनने में अजीब लगता है, हम सब तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट बने।
चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन जब हम कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, तो बच्चा सोचने लगता है कि स्मार्ट होना एक स्थायी चीज है, एक लेबल है। फिर वो ऐसी चीजें करने से डरने लगता है जिनमें फेल होने का खतरा हो।
क्यों?
ताकि उसकी वो स्मार्ट वाली पहचान बनी रहे, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो फिर क्या करना चाहिए, तारीफ ही ना करे? नहीं, तारीफ करनी है। लेकिन डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि हमें बच्चों की प्रक्रिया, प्रोसेस की तारीफ करनी चाहिए।
प्रक्रिया मतलब?
मतलब उनकी कोशिश की, उनकी रणनीति की, उनकी लगन की, उनके सुधार की। जैसे तुमने इस सवाल पर बहुत मेहनत की, मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद आया, देखो प्रैक्टिस करने से तुम कितना बेहतर हो गए।
अच्छा, इससे क्या होता है?
इससे बच्चे सीखते हैं कि मेहनत और सीखने से काबिलियत बढ़ती है, सफलता कोशिश का नतीजा है, सिर्फ स्मार्ट होने का नहीं।
ये तो सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ी एक और कमाल की चीज आपने बताई थी, अभी नहीं की ताकत।
हाँ, नॉट येट, ये छोटा सा शब्द पर बहुत शक्तिशाली है। जब कोई बच्चा या कोई भी कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो ये एक फुल स्टॉप जैसा लगता है, बात खत्म।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन अगर हम कहें तुम ये अभी नहीं कर सकते, या वो खुद सोचे मैं ये अभी नहीं कर सकता,
तो ये एक रास्ता खोल देता है।
हाँ, ये बताता है कि क्षमता कोई मंजिल नहीं, सफर है, सीखना जारी है।
ये छोटा सा शब्द पूरी सोच बदल सकता है, निराशा को उम्मीद में बदल सकता है।
तो सवाल उठता है कि क्या हम अपने माइंडसेट बदल सकते हैं? अगर किसी का फिक्स्ड माइंडसेट है तो क्या वो ग्रोथ में बदल सकता है?
डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, बिल्कुल, ये आसान नहीं है, मानती हूँ, ये एक सफर है आदत बदलने जैसा, पर मुमकिन है।
कैसे, क्या तरीके हैं?
वो चार कदम बताती हैं। पहला, अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को पहचानना सीखें। वो आवाज जो जज करती है, डराती है, बहाने बनाती है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, इसमें फेल हो जाऊंगा।
वो आवाज तो अक्सर आती है।
दूसरा कदम, दूसरा, ये समझें कि आपके पास चॉइस है, आप उस आवाज को मान सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं, ये आपके हाथ में है।
ठीक है, तीसरा?
तीसरा, उस फिक्स्ड आवाज का जवाब एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज से दें, वो आवाज जो सीखने पर जोर देती है, कोशिश करने को कहती है, मदद मांगने को गलत नहीं समझती। चलो कोशिश करते हैं, गलती होगी तो सीखेंगे, देखते हैं क्या होता है।
और चौथा,
सबसे जरूरी, ग्रोथ माइंडसेट वाला कदम उठाएं, एक्शन लें, चुनौती स्वीकार करें, भले ही छोटी सी हो, नई रणनीति आजमाएं, मदद मांगे, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, करने की बात है।
ये वाकई उम्मीद जगाता है कि बदलाव संभव है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। मेरे लिए पहले तो यही कि हमारी मान्यताएं हमारी हकीकत बन जाती हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करने लगते हैं और वैसे ही नतीजे पाते हैं। ये सिर्फ सोच नहीं, ये हमारे एक्शन का इंजन है।
दूसरी अहम बात, असफलता का मतलब बदलना, ये मुझे बहुत जरूरी लगी। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर मतलब मैं बेकार हूँ।
हाँ, पहचान पर हमला, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर मतलब ये तरीका काम नहीं आया, चलो दूसरा ट्राई करते हैं, या मुझे और सीखने की जरूरत है, ये सिर्फ जानकारी है, पहचान पर धब्बा नहीं।
बिल्कुल। और हमारे यहाँ भारत में जहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है, परीक्षाओं का इतना दबाव है,
हाँ,
वहाँ फेलियर को इस नजरिए से देखना कितना जरूरी है, पर मुश्किल भी है, मानूंगा।
हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तीसरा पॉइंट।
तीसरा, जैसा हमने कहा, अभी नहीं, येट की शक्ति। मैं नहीं कर सकता से मैं अभी नहीं कर सकता तक का सफर, ये निराशा को उम्मीद में बदल देता है।
चौथा, तारीफ का तरीका बदलना। काबिलियत की तारीफ तुम स्मार्ट हो की जगह प्रक्रिया की तारीफ, तुमने मेहनत की, ये शायद पेरेंटिंग और टीचिंग में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है।
और पांचवा, कोशिश करना शर्म की नहीं गर्व की बात है। अक्सर हमें लगता है कि असली टैलेंट वो है जिसे मेहनत ना करनी पड़े, एकदम एफर्टलेस।
हाँ, ये मिथक है, पर ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि कोशिश ही टैलेंट को जगाती और बढ़ाती है। कोई नई स्किल सीखते वक्त, जैसे कोई भाषा या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि रोज की प्रैक्टिस और सीखने की प्रक्रिया पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद है, उस सफर को एंजॉय करना।
सही कहा, किताब में कई ऐसी लाइनें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसा आपने पहले भी कहा था।
हाँ, कई हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद आई वो है, बार बार ये साबित करने में समय क्यों बर्बाद करें कि आप कितने महान हैं, जबकि आप बेहतर बन सकते हैं, कमियों को छिपाने के बजाय उन पर काबू क्यों ना पाएं?
वाह, ये सीधे सीधे पूछती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, अपनी इमेज बचाना या सच में ग्रो करना।
एग्जैक्टली, ये फिक्स्ड और ग्रोथ के फर्क को एकदम साफ कर देती है।
हाँ, एक और दमदार विचार था, आप अपने बारे में जो नजरिया अपनाते हैं वो आपके जीवन जीने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है।
मतलब माइंडसेट सिर्फ एक विचार नहीं, ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया देखते हैं और अपने रास्ते चुनते हैं।
ये भी,
ये हमारी पूरी लाइफ को गाइड करता है।
और ये भी, खुद को बेहतर बनाने और उसमें लगे रहने का जुनून, खासकर तब जब चीजें ठीक ना चल रही हों, ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। यही मानसिकता लोगों को जीवन के सबसे मुश्किल दौर में भी कामयाब बनाती है।
हाँ, ये मुश्किलों में टिके रहना, उनसे सीखना और आगे बढ़ते रहने की अहमियत बताता है,
रेजिलियंस जिसे कहते हैं।
तो इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ,
कुछ प्रैक्टिकल तरीके।
हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो बच्चों के साथ बातचीत में, जैसा हमने कहा, उनकी कोशिश और तरीकों की तारीफ करें, ना कि सिर्फ नतीजों या स्मार्टनेस की। मुश्किल चीजों को चैलेंज की तरह पेश करें, डर की तरह नहीं। तुमसे नहीं होगा की जगह, चलो देखते हैं इसे कैसे किया जा सकता है, या तुमसे अभी नहीं हो रहा, कोशिश करते रहो।
और काम की जगह पर, ऑफिस में, वहां भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जहां लोग सवाल पूछ सकें, नई चीजें ट्राई कर सकें और गलतियों से सीख सकें। लीडर खुद सीखने की इच्छा दिखाएं।
हाँ, ये जरूरी है।
और टीम को भी इसके लिए प्रेरित करें। फीडबैक को गिफ्ट की तरह देखें, हमले की तरह नहीं।
और अपने लिए, पर्सनल लेवल पर,
अपने लिए सबसे पहले तो अपने अंदर की फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को पहचानना शुरू करें। उसे नोटिस करें। जब भी वो आवाज कहे ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, फेल हो गया तो क्या होगा,
तो उसे सुने।
हाँ, सुने और पहचाने। फिर उसे ग्रोथ माइंडसेट से जवाब दें, ये मुश्किल है पर मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं इसे अभी नहीं कर सकता पर सीख सकता हूँ, फेलियर से भी कुछ सीखने को मिलेगा।
और फिर एक्शन ले।
हाँ, छोटा सा ही सही पर एक्शन ले। और रिश्तों में भी जब कोई झगड़ा या मतभेद हो तो साथी को दोष देने के बजाय ये सोचे कि हम मिलकर इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझा सकते हैं, या इस स्थिति से हम एक दूसरे के बारे में क्या सीख सकते हैं। एक दूसरे के पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करें।
बिल्कुल। अगर मुझसे पूछें कि इस खिताब से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो वो ये है कि हम अक्सर अपनी सीमाओं को खुद ही तय कर लेते हैं, ये मान करके हमारी क्षमताएं फिक्स्ड हैं। ये किताब उस सोच से आजादी दिलाती है। ये बताती है कि मेहनत और सही नजरिए से हम सब आगे बढ़ सकते हैं। ये जानना ही अपने आप में बहुत पावरफुल है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, ये एक चॉइस है जिसे हम हर रोज हर पल चुन सकते हैं। हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं
और उससे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।
हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है जैसा आपने कहा, ये एक्टिव लर्निंग और ग्रो करने का तरीका है, एक्शन ओरिएंटेड है।
तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं।
हाँ जरूर।
जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा एरिया है, काम, रिश्ते, कोई स्किल, सेहत, जहां आप शायद अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट से काम ले रहे हैं। माइंडसेट में बदलने के लिए आप आज ही कौन सा पहला छोटा सा कदम उठा सकते हैं।
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।